بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انگراہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چنھ ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9800 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج گروار ہے، دی ماہ کی 7، جماعت ثانی کی 14 اور دسمبر کی 28 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ رکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت آپ سنیں گے کاریکرم آج کی بات، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا ایران شتابدی کے جھروکے میں۔ تو دوستو، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ رکھا، اور ابھی آپ کچھ کھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی جنتا نے نم آنکھوں سے اپنے کمانڈر کو کیا ودا، سپریم لیڈر نے پڑھائی نماز جنازہ۔ ایران نے امریکہ کو سچیت کر دیا، اسرائیل کا سمرتھن بند کرے واشنگٹن۔ یمنی بلوں نے امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کو کھلی چیتاونی دے دی۔ بھارت اور روس کے بیچ مہتوپورن پرمانو ارجا سمجھوتا ہوا ہے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور اختر رضوی سے وستار سے سماچار سنیے۔
آج صبح ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے شہید سید رضی موسوی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سپاہی پاسداران کے ورشٹھ کمانڈر کی نماز جنازہ کے اوسر پر مہان ہستیاں، گڑمانے لوگ اور ادھیکاری موجود تھے۔ ان کی شو یاترا تہران کے امام حسین اسکوائر سے نکالی گئی، اور اس شو یاترا میں شامل لوگوں نے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ سپاہی پاسداران کے ورشٹھ کمانڈر سید رضی سیریا میں سینیہ پرامرش کا کام انجام دیتے تھے، جہاں اسرائیل نے پچھلے سوموار کو ان کے مکان پر ایک آتنکوادی حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ سیریا میں ایران کے راج دوت حسین اکبری نے سید رضی موسوی کی شہادت کے سمبندھ میں کہا کہ سوموار کو دن کے 2 بجے تک سید رضی ایرانی دوتاواس میں موجود تھے، اس کے بعد وہ دمشق میں استھت زینبیہ شہر میں اپنے گھر گئے، اور استھانیہ سمے کے انوسار 4:10 پر اسرائیل نے ان کے گھر کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔
اسلامی گنتندر ایران کے راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ ایران ایشیا اور شیتر کے سبھی آرتھک بنیادی ڈھانچے سے جڑا ہوا ہے۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے پوتر نگر قوم میں برکس، شنگھائی اور یوریشین اکنامک یونین میں ایران کی سدستا کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وبھن کھیتروں میں جنتا کی سفل اپستھتی کی وجہ سے دشمن کو سنیوکت یدھ میں نراشا اور وفلتا ہاتھ لگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران شنگھائی، برکس اور یوریشین سنگھ کا سدسیہ بننے اور ایشیا کے سبھی آرتھک بنیادی ڈھانچے سے جڑنے میں سکشم ہے، اور ایران کی ویاپاری گتیویدھیوں نے پچھلے 40 ورشوں میں ایک ریکارڈ بنایا ہے۔
ईरान के विदेश मंत्री ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसराइल का सैन्य समर्थन करने से बाज आ जाए। विदेश मंत्री अमीर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बुधवार को यरवान में कहा कि नए साल के आरंभिक महीनों में आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के मध्य टिकाऊ शांति संभव है। साथ ही उन्होंने अमरीकी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इसराइल का सैन्य समर्थन करने से बाज आ जाए और गजा तथा फिलिस्तीन के लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करने दें।
यमन के सशस्त्र बलों ने ऐलान किया है कि यदि गजा की घेराबंदी जारी रही तो वे जानी दुश्मन के खिलाफ हमले तेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका और उसके सहयोगियों को लाल सागर में युद्ध की स्थिति में पैदा करने के परिणामों को भलीभांति समझना होगा। यमन के सशस्त्र बलों की 5वीं डिवीजन के कमांडरों ने अपनी एक बैठक में क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति की समीक्षा की। इन कमांडरों ने अमरीका और उसके सहयोगियों को लाल सागर के युद्ध की स्थिति के परिणामों के बारे में चेतावनी दी और घोषणा की कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन की स्थिति स्पष्ट है और इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यमनी सैन्य कमांडरों ने घोषणा की कि यमन की सशस्त्र सेनाएं कभी भी जानी समर्थक दुश्मन देशों को लाल सागर से कोई लाभ नहीं उठाने देंगी और इस जल क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के दुश्मनों को यमनी सेनाओं का सामना करना पड़ेगा।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों ने आज सुबह दक्षिणी अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के एक इलाके पर हमला किया। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट ने घोषणा की कि उसने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के दक्षिण में स्थित अलियाद जायनी कॉलोनी को निशाना बनाया। इस संबंध में जायनी मीडिया ने दक्षिणी गोलान में एक इमारत पर आत्मघाती ड्रोन हमले की सूचना दी। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट ने एक बयान में कहा कि उसने गजा की जनता के समर्थन और फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं के नरसंहार के जवाब में बुधवार सुबह पूर्वोत्तरी एरबिल में जायनी शासन के एक जासूसी केंद्र को भी निशाना बनाया था।
फिलिस्तीन के निर्दोष व मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के पाशविक हमले जारी हैं। अतिक्रमणकारी जायनी सैनिकों ने आज गजा पट्टी के खान यूनस क्षेत्र के अमल अस्पताल के समीप हवाई हमला किया जिसमें 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। इसी प्रकार जायनी सैनिकों ने आज सुबह रामल्ला में हमला करके एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। समाचार एजेंसी इरना ने अल जजीरा के हवाले से बताया है कि जायनी सैनिकों ने रामल्ला में गोली मारकर एक फिलिस्तीनी को शहीद और 15 अन्य को घायल कर दिया। इसी प्रकार जायनी सैनिकों ने जनीन अल खलील तुलकर्म और नावलस शहरों में हमला किया जहां उनकी फिलिस्तीनियों से झड़पें हुईं।
जायनी सेना ने ऐलान किया है कि गजा युद्ध में उसके 3 और सैनिक मारे गए हैं। जायनी सेना ने अपने बयान में कहा है कि उसकी सार मेगोलन बटालियन के 22 वर्षीय सैनिक को दक्षिणी गजा में मार दिया गया जबकि 24 वर्षीय सैनिक नेरिया जिसिक को मध्य गजा में मार दिया गया। ये दोनों रिजर्व सेना के जवान थे। जायनी सेना ने मारे गए तीसरे सैनिक के बारे में बयान में कहा कि 32 वर्षीय डेविड फेमा मध्य गजा में मारा गया और 180वीं बटालियन का डिप्टी कमांडर था।
जायनी मीडिया का कहना है कि इसराइली सैन्य अधिकारियों ने गजा युद्ध में गलत रणनीति अपनाने की बात स्वीकार की है। जायनी समाचार पत्र एदियत आहरनोत ने गजा युद्ध में सेना द्वारा गलत रणनीति की बात स्वीकार करने की ओर इशारा करते हुए हिजबुल्ला और जायनी शासन के बीच एक बड़े युद्ध की संभावना की सूचना दी है। इसराइली अखबार यदियत आहरनोत ने लिखा है कि जायनी शासन की सैन्य कमान ने राजनीतिक अधिकारियों को सूचित किया है कि वर्ष 2024 युद्ध का वर्ष होगा। जायनी सेना के सेनाध्यक्ष हर्ट्जी हलेविन ने दावा किया है कि उनके पास कट्टरपंथी गुटों को खत्म करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। लड़ाई कठिन और निर्णायक है और हम हमास के नेताओं को पकड़ लेंगे। इसमें 1 सप्ताह या इसमें कई महीने लग सकते हैं।
जायनी शासन को कैदियों के आदान प्रदान के लिए हमास के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है। जायनी अखबार यतियत आहरनोत ने बताया है कि आने वाले दिनों में कतर की मदद से कैदियों के आदान प्रदान के समझौते समझौते के संबंध में इसराइल फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास का जवाब का इंतजार कर रहा है। इस अखबार ने लिखा कि इसराइल में ऐसे किसी समझौते को लेकर फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के से कोई सकारात्मक जवाब की उम्मीद नहीं है, जबकि तेल अवीव का मानना है कि हमास पर सैन्य दबाव डालकर ही इसका सकारात्मक जवाब हासिल किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने गजा के नागरिकों के खिलाफ इसराइल के हमलों में तेजी आने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है कि इसराइली हमलों का बढ़ना संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चिंता का कारण है। प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इसराइल ने 24 और 25 दिसंबर को गजा के खिलाफ 50 से अधिक हमले किए जिसमें 3 फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया।
तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क विभाग के प्रमुख ने कहा है कि नेतन्याहू को आत्मरक्षा के बहाने आम नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों का उचित दर्शाने में बड़ी महारत और दक्षता है।
यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच भारत ने रूस के साथ एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा समझौता किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को में हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरो के साथ व्यापक और रचनात्मक बैठक के बाद ये घोषणा की।
भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग की प्रथा को समाप्त करते हुए तमिलनाडु में दलित समुदाय के 60 सदस्यों ने रविवार 24 दिसंबर को क्षेत्र में कथित ऊंची जातियों द्वारा उन पर लगाए गए एक अलिखित प्रतिबंध को तोड़ दिया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ راجنیتک چرچا۔ दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे विभिन्न वर्गों की हजारों महिलाओं के साथ मुलाकात में सर्वोच्च नेता द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं।
और फिर बात करेंगे गजा में शहीदों की संख्या में लगातार होती वृद्धि के बारे में।
फिलिस्तीन के निर्दोष व मजलूम लोगों के खिलाफ।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाई है।
भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने
तो सबसे पहले बात करते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की प्राण प्रिय सुपुत्री हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष में हजारों महिलाओं के साथ आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई की हुई मुलाकात के बारे में। सर्वोच्च नेता ने कहा है कि महिलाओं के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण तार्किक है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिज़वी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस्लाम में पुरुषों की ही भांति महिलाओं के लिए भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मार्ग खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि दो शर्तों के साथ महिलाएं हर सामाजिक गतिविधि में भाग ले सकती हैं। पहली शर्त यह है कि परिवार की सुरक्षा और दूसरी शर्त यौन आकर्षण के खतरों से स्वयं को सुरक्षित रखना। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समाज की विभिन्न वर्गों की महिलाओं के साथ होने वाली भेंट में बुधवार को आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनई ने महिलाओं की पहचान, उनके मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतंत्रता और सीमाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में विश्व में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं, एक इस्लामी और दूसरा पश्चिमी। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के मुकाबले में हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच पाया जाने वाला शारीरिक अंतर उन मुद्दों में से एक है जिसने समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में संदेह पैदा किए हैं। यही विषय उनके मध्य कानूनी अधिकारों के मतभेदों का कारण भी बना हुआ है। इस बारे में इस्लाम और पश्चिम के दृष्टिकोणों में खुला विरोधाभास पाया जाता है। पश्चिम में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर फेमिनिज्म या नारीवादी विचारधारा ने जन्म लिया। इस विचारधारा के अंतर्गत महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए ये सभी सामाजिक संरचनाओं में बदलाव की इच्छुक है। हालांकि पश्चिम में इसके विपरीत बहुत कुछ देखा जा रहा है। वहां पर इस समय भी महिलाओं को अन्याय तथा हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम में पाई जाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था पुरुष प्रधान संस्कृति की आड़ में ही फेमिनिज्म को बढ़ावा देकर खूब लाभ उठा रही है। पश्चिम की पूंजीवादी व्यवस्था अपने संचार माध्यमों और विज्ञापन उद्योग के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताओं को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के मान सम्मान का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम में महिलाओं ने हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता हासिल की है, किंतु वहां पर अब भी वे अपनी प्रकृति से दूर होती जा रही हैं। यही विषय पश्चिम में महिलाओं की पहचान को लेकर चिंता का कारण बना हुआ है। फेमिनिज्म विचारधारा के एक आलोचक टोनी ग्रेंट मानते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिम में महिलाएं स्वतंत्र तो दिखाई देती हैं, किंतु भावनात्मक रूप से वे अपनी माँ, दादी या नानी की तुलना में अधिक जरूरतमंद, अधिक असुरक्षित एवं अधिक अकेली तथा असहाय हो चुकी हैं। इस समय पश्चिम में नारीवाद की आड़ में महिलाओं के अधिकारों की समानता की जो बातें कही जाती हैं, वे वास्तव में उनके अधिकारों को अनदेखा करने के अर्थ में हैं, क्योंकि वहां पर वे भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक दबाव सहन कर रही हैं। इसी संदर्भ में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं के कर्तव्य भी अलग अलग हैं। इस हिसाब से कुछ लोग जो निरपेक्ष रूप से लैंगिक समानता का नारा पेश करते हैं वो अनुचित है, बल्कि जो बात सही है वो है लैंगिक न्याय।
और अब चर्चा करते हैं गजा युद्ध के बारे में। इसराइली अत्याचार की भूमि किसने प्रशस्त की और फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ अत्याचार कब तक जारी रहेंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिसके जवाब पाना जरूरी हो गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी।
फिलिस्तीन के निर्दोष व मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के पाश्विक हमले यथावत जारी हैं। अतिक्रमणकारी ज़ायनी सैनिकों ने आज गजा के खान यूनुस क्षेत्र के अमल अस्पताल के निकट हवाई हमला किया, जिसमें 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ ज़ायनी सरकार के भीषण पाश्विक हमलों को जारी हुए 83 दिन का समय गुजर गया, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर गजा पट्टी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है और ये पट्टी खंडर में परिवर्तित हो गई है और 21,000 से अधिक लोग शहीद हो चुके हैं। परंतु मानवाधिकार की रक्षा की दुहाई देने वाले पश्चिमी व यूरोपीय देश, विशेषकर इसराइल का मूल समर्थक अमेरिका, पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका न केवल चुप्पी साधे हुए है बल्कि फिलिस्तीनियों के दमन के लिए हर प्रकार के विनाशकारी हथियार भी दे रहा है और इन हथियारों में प्रतिबंधित फास्फोरस बम भी शामिल है। अमेरिका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि जो 21,000 से अधिक फिलिस्तीनी इसराइल के पाश्विक हमलों में मारे गए हैं, उनका दोष क्या था। जो फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं उनमें सबसे अधिक संख्या फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की है और शहीद होने वाले हजारों फिलिस्तीनी अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वालों से पूछा जाना चाहिए कि वे चुप क्यों हैं? क्या फिलिस्तीनी इंसान नहीं है? क्या महिलाओं और बच्चों की हत्या मकानों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अस्पतालों पर किया जाने वाला हमला आत्मरक्षा में किया जाने वाला हमला है या ये हमला अपराध है? अगर ये आत्मरक्षा में किया जाने वाला हमला है तो युद्ध अपराध क्या है? इसी प्रकार जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर इसराइल के अवैध अस्तित्व की घोषणा की, भूमि प्रशस्त की और इन्हीं देशों के समर्थन से इसराइल 75 साल से अधिक समय से فلسطین کے مظلوم لوگوں کے خلاف اتیاچار کر رہا ہے اور شوچنیہ بندو یہ ہے کہ اسرائیل نے 21,000 سے ادھک نردوش فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور سرکشا پریشد میں آج تک اسرائیل کے برتنہ میں ایک پرستاؤ تک بھی پارت نہیں ہوا۔ سارانش یہ کہ فلسطینیوں کا نرسنہار مانواधिकारوں کی رکشا کا دم بھرنے والے دیشوں کے سمرتھن ہوا آشیواد سے ہو رہا ہے اور جب تک ان دیشوں کا سمرتھن بند نہیں ہوگا تب تک وشو سمدائے فلسطینی جنتا پر ہو رہے اتیاچاروں کا ساکھی رہے گا۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس اپنا 139واں استھاپنا دیوس منا رہی ہے۔ ہیں ہم تیار شیرشک کے تحت ناگپور میں ہوئی ریلی میں بھاری سنکھیا میں کانگریس نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے بھاگ لیا ہے۔ کانگریس کے استھاپنا دیوس سماروہ میں راہل گاندھی نے کہا، انڈیا اور این ڈی اے میں وچار دھارا کی لڑائی ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سمواددتا شمشاد کاظمی۔
بھارت کے مکھیہ وپکشی دل کانگریس نے آج ناگپور میں ایک وشال ریلی کر کے اگلے ورش کے لوک سبھا چناؤ کے لیے اپنا ابھیان شروع کر دیا ہے۔ کانگریس کے 139ویں استھاپنا دیوس پر ہیں تیار ہم کی تھیم پر مہا ریلی کا آیوجن کیا گیا، جس میں راہل گاندھی، پریانکا گاندھی، کانگریس ادھیکش ملک ارجن کھڑگے اور کاریہ سمیتی کے سدسیوں اور پرانتیہ نیتاؤں اور کاریکرتاؤں نے بھاگ لیا۔ اسوستھ ہونے کے کارن کانگریس کی پورو ادھیکش سونیا گاندھی نے اس ریلی میں بھاگ نہیں لیا۔ دیش کے وبھن بھاگوں سے کانگریسی نیتا ایوم کاریکرتا ناگپور پہنچے ہیں۔ کانگریسی نیتا عمران پرتاپ گڑھی،
اپنا چلایا ہوا 2000 کا نوٹ 7 سال نہ چلا پانے والے ہم سے 70 سالوں کا جواب مانگتے ہیں۔
کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ استھاپنا دیوس پر ہم سب مل کر دیش کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اپنی وچار دھارا سے کبھی بھی جھکنے والی نہیں ہے اور اپنی وچار دھارا سے ہی آگے بڑھے گی۔
ہم مل کر ایک سندیش دینا چاہتے ہیں دیش کو کہ کانگریس پارٹی اپنے وچار دھارا سے کبھی جھکنے والے نہیں ہیں۔
کانگریسی سانسد راہل گاندھی نے مہا ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دیش میں آج دو وچار دھارا کی لڑائی ہے۔ ان کے انوسار بھاجپا میں اوپر سے آئے آدیش کا پالن کرنا ضروری ہے، جبکہ کانگریس میں ایسا نہیں ہے اور سبھی کو بولنے کا ادھیکار ہے کیونکہ پارٹی میں لوک تنتر ہے۔
یہ آر ایس ایس کی وچار دھارا ہے، یہ ہم نے بدلا ہے اور ایک بار پھر یہ ہندوستان کو واپس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ جو آزادی سے پہلے تھا وہاں ہندوستان کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن سے، آپ کے ووٹ سے الگ الگ سنستھائیں بنتی ہیں، یہ آپ کی سنستھائیں ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، یہ آپ کی سنستھائیں ہیں۔ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔
کانگریسی نیتا پون کھیڑا نے کہا کہ ناگپور ایک ایتہاسک استھان ہے جہاں کانگریس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سنگٹھن میں مہاراشٹر اور ناگپور کا بڑا یوگدان ہے۔ کانگریس سانسد مریکم ٹیگور نے کہا کہ آر ایس ایس نامک ایک سنگٹھن کا مکھیالے ناگپور میں ہے جو ان کے انوسار نفرت پیدا کرتا اور پھیلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس یہ دکھائے گی کہ بھارت میں نفرت ختم ہونی چاہیے اور ہمیں پرتیک بھارتیہ کے لیے پیار اور سنیہ کا واتاورن ثابت کرنا چاہیے۔ مہاراشٹر کانگریس کے نیتاؤں نے کہا کہ ان کی پارٹی مہاراشٹر میں مہا وکاس اگھاڑی گٹھ بندھن میں شامل شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ اور شرد پوار کے این سی پی کے ساتھ مل کر آگامی چناؤں میں بھاجپا کو پراجت کرے گی۔ ناگپور بھوگولک درشٹی سے بھی مہتوپورن ہے، جہاں 1920 میں مہاتما گاندھی کے نیتریتو میں کانگریس کا سمیلن ہوا تھا، جس کے دوران برٹش سرکار کے ورودھ نان کوپریشن موومنٹ کی کال دی گئی تھی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित थे हमारे साथी रविश जैदी। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। उसके उपरांत आप दूसरा कार्यक्रम सुनेंगे ईरान शताब्दी के झरोखे में। तो पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। आज की बात, दोस्तों कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम भारत में महिला पहलवानों के साथ होने वाले अन्याय के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। संजय सिंह बीते 21 दिसंबर को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। वो इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, जिन्हें बाहर करने की मांग भारत के शीर्ष पहलवानों ने की थी। ब्रजभूषण पर कम से कम 7 पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद घोषणा की थी कि वो विरोध में कुश्ती से संन्यास ले रही हैं।
हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको धन्यवाद।
इसके अलावा ओलंपियन बजरंग पुनिया और डेफलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह यादव ने अपने पदक और पद्मश्री पुरस्कार वापस करने की घोषणा की थी।
बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापिस करने आया था। हमारी सरकार के साथ ना पहले लड़ाई थी ना आज लड़ाई है, हमारी लड़ाई है एक व्यक्ति के साथ थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको राजनीति मोड़ भी दे दिया। उसने बोल दिया कि भैया सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास पावर है, और हमें उम्मीद थी इसलिए हम उठ के गए थे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो हम क्यों उठ के जाते सरकार के आश्वासन पे? वो आश्वासन पे सरकार अपने खड़े नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात हैं। वो सरकार अपनी स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पा रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं खिलाड़ी? ये हमने पहले बोला था, वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए पहलवान ओलंपिक विजेता विजेंद्र सिंह कहते हैं,
बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित है, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं, और मैं चाहूंगा कि उनके साथ न्याय हो, और जितने भी लोग जितने भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बार जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचेगा जरूर इस बात को। हाँ सर, स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को सर वो स्पोर्ट्स नहीं, उसका एक वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है मैं मानता हूँ। और हमारे मुल्क में तो कहते तीन चीजें बहुत चलती हैं, एक तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है, एक बॉलीवुड बहुत चलता है, क्रिकेट बहुत चलता है। तो ये तीनों चीजों में कहते कि कभी भी जो असली मसला होता है उसके ऊपर कभी बात नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिए बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर स्टार या कोई भी जो काम का ढंका करने वाला इंसान है, जो काम की बात होगी उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। और जो जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी राज्यसभा हैं, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। ये सब ये सच्चाई है, ये आप सबको मालूम है सर, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। तो अपने जो रोल मॉडल हैं, चूज वाइजली, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं, जो आपको हर मसले पर जवाब दे, जो आपके साथ हमेशा दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आप उसको रोल मॉडल चुनिए, ना कि जो टीवी पे दिखता है उसको नहीं।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात। इस साल जनवरी के महीने में पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था। कई हफ्तों के विरोध के बाद पिछले 23 जनवरी को मामले की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय के आश्वासन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन करने के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। महिला पहलवानों पर होने वाले अत्याचार और उनके कुश्ती छोड़ने की घटना से पहलवान और उनके अभिभावक काफी आहत हैं। इस बारे में पहलवानों और उनके अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं सुनिए।
साक्षी जी ने कल अनाउंस किया है कि वो संन्यास लेंगे, आगे रेसलिंग नहीं करेंगे, और वो इकलौती महिला है जो ओलंपिक में मेडल लेके आई है। तो इसको इससे सभी पहलवानों को, जो आगे उभरते हुए पहलवान है, जो आगे रेसलिंग करने का सोचते हैं, सबको धक्का लगा है। वो हम सब की रोल मॉडल हैं।
जो पेरेंट्स हैं वो बेटियों को भेजते हैं रेसलिंग करने के लिए।
कितना? काफ़ी है? इतना बता, आगे बोल लूँगी फिर बात बताऊँगी।
लड़की रेसलर को धक्का तो लगा ही है जी, वो थोड़ा और 2 साल अभी साक्षी दीदी अभी और टाइम देती बच्चों को तो और थोड़ा मार्गदर्शन अच्छा होता। ये तो एक कुश्ती में थोड़ा नुकसान तो है ही। देखो जी, वो इतनी बड़ी एक ओलंपिक की मेडलिस्ट पहलवान है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। तो हम जैसे पेरेंट्स जो अपनी उसकी प्रतिभा को देख के अपनी लड़कियों को रेसलिंग में डाल रहे हैं, तो हम बच्चों की, हमारे इन बच्चों की बातें कैसे सुनी जाएंगी जी? ये तो नुकसान वाली बात है। देखो, इंसाफ तो होना चाहिए जी।
ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जी। ये तो मान लो आने वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए काफी दुख की बात है। अभी तो कुछ बहुत ही कुछ आगे सीखने को मिलता बच्चों को साक्षी पहलवान से। करियर को दिक्कत है और ऊपर से दबाव दे देते हैं और करियर की भी, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफी वो जाती हैं, इसलिए बेचारी लड़कियां चुपचाप रहती हैं।
देखो, जो मांग थी बच्चों की वह जाज थी, उन जो कुश्ती की बच्चियां हैं, लड़कियां जो हैं, उनका लड़की कोई हो देख रेख में तो अच्छा रहता है। बड़े प्लेयरों का लगे होता है तो, और छोटे मोटे तो डरे तो गए।
इस दौरान बृजभूषण को महासंघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया था। हालांकि कोई कार्रवाई न होने के बाद पिछले 23 अप्रैल को बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत अन्य पहलवानों ने प्रदर्शन
दोबारा शुरू कर दिया था। किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने इस घटना पर सरकार की आलोचना की और कहा कि यह अपराध सिर्फ देश की महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पूरे दुनिया के खेल जगत के साथ हुआ है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र में जहां हमारे देश में महिलाएं स्पोर्ट्स में इतनी पीछे रहती थी, वो आगे आकर के उनके परिवारों ने, और वो भी हरियाणा या रूरल बैकग्राउंड की, जहां पर कहा जाता था कि जो भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा प्रचलित रहती थी, उस चीज को तोड़ करके ये महिलाएं आगे आई। लंबे समय तक इन्होंने 15-15, 20-20 साल संघर्ष किया, तपस्या की, उसके बाद देश का गौरव बढ़ाया। और जो बॉडी इनको एनकरेज करके, ट्रेन करके और देश का गौरव बढ़ाने के लिए आगे तैयार करने के लिए तैयार मतलब ऑफिशियली थी रेसलिंग फेडरेशन, उसी के पदाधिकारियों द्वारा इनके साथ इस तरह का जो यौन शोषण का जो है अपराध किया गया है, यह अपराध केवल देश की महिलाओं के ही साथ नहीं है, ये पूरी विश्व की खेल की फ्रेटर्निटी समझ लीजिए, महिलाएं समझ लीजिए, या देश के गौरव के साथ खिलवाड़ करने का काम जो है इस फेडरेशन द्वारा किया गया है। और उससे भी ज्यादा अपराधी मैं समझता हूं हमारे देश की जनता या सिस्टम या सरकार, विशेषकर ये जो सरकार अभी चल रही है, वो है जो ऐसे अपराधी के सामने आने पर भी और बार बार आंदोलन होने के बावजूद भी जिन्होंने इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की, और अब इसको जोड़ रहे हैं कि साहब जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने, उनकी जरा सी मिमिक्री क्या हो गई और उसको इन्होंने जाट समाज से जोड़ दिया। लोग कह रहे हैं दबदबा कायम रहेगा, तो दबदबा कायम है, ये तो भगवान का दिया हुआ दबदबा है, तो दबदबा तो रावण का भी कायम नहीं रहा, न्याय आपके साथ होगा, लेकिन अभी आप सरकार दम में है, इसको कंटिन्यू कर रही है, तो आगे देखते हैं किस तरह का संघर्ष इसमें किया जाएगा।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी रुलाओ और बेटी सताओ का नारा गढ़ा जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, पर दोषी भाजपा सांसद, भाजपा के चहेते सांसद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो खुला घूमता रहा। इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात क्या होगी कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों और पहलवान खिलाड़ियों को अपने मेडल गंगा मैया में बहाने पड़े। कारण केवल इतना कि ब्रिजभूषण सिंह को मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये केवल भारतीय कुश्ती संघ नहीं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया समेत सारे संघों पर, खेल के संघों पर भाजपा नेताओं का आज कब्जा है। मोदी जी तो कहते हैं कि खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से छुट्टी दिलवा दी, पर सच्चाई इसके विपरीत है। साथियों, क्या मोदी सरकार को इस देश में एक भी महिला खिलाड़ी पहलवान नहीं मिली, कोई एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन सकता था, चुना जा सकता था? अगर यही आलम रहा तो इस देश की बेटियां और उनके अभिभावक, उनके माता पिता और परिवार किस पर विश्वास कर अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेंगे? यह अत्याचार साक्षी मलिक के साथ नहीं, यह अत्याचार विनेश फोगाट के साथ नहीं, यह अत्याचार विजेंद्र बॉक्सर और इन जैसे अनेक काबिल खिलाड़ियों के साथ नहीं, यह अत्याचार, इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, मोदी सरकार चुप क्यों है?
दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ईरान शताब्दी के झरोके में
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
समकालीन ईरान का इतिहास विशेष रूप से पहलवी राजवंश की आधी सदी के दौरान उथल पुथल के साथ रहा। इस दौरान ज्यादातर बाहरी विकास और पैटर्न की वजह से विकास की ओर बढ़ते समाज के कदम को बाधित किया गया। रजा शाह की सरकार की स्थापना के साथ ही समाज के मूल्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप लोगों की मान्यताओं और मूल्यों के साथ खिलवाड़ पहलवी राजवंश के अंतिम दिनों तक जारी रहा। दोस्तों, हम अगले कुछ कार्यक्रमों में पहलवी शासन के दौरान संस्कृति और कला के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उससे समाज को कितना नुकसान पहुंचा है, उस पर रोशनी डालेंगे।
वर्ष 1920 में होने वाले तख्ता पलट और उसके बाद रजा खान का सत्ता तक पहुंचना, इसने ईरानी समाज के ऐतिहासिक संघर्ष में एक नए चरण की शुरुआत की। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए उसकी सरकार ने भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य आयामों में एकाग्रता के सिद्धांत को अपनी योजनाओं में सबसे ऊपर रखा। सांस्कृतिक रूप से रजा शाह की सरकार ने सांस्कृतिक एकीकरण की नीति लागू करके सत्ता के केंद्रीकरण को साकार करने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी अन्य नीतियां जैसे एकल सेना बनाना, खाना बदोशों का बसाना, नियमों और कानूनों को अनुकूलित करना आदि, लेकिन इसके द्वारा की जाने वाली यह तमाम दिखावटी प्रयास उनको सत्ता में बनाए रखने और उनकी सरकार को अस्थिर रखने में कामयाब नहीं हो पाए।
ईरानी समाज की जाति और सांस्कृतिक विविधता के साथ ही साथ जलवायु विविधता भी इस रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। इस कारण से रजा शाह ने ईरानी समाज के सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करके और उसे एक समान भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों वाले समाज में परिवर्तित करके केंद्रीयवाद की नीति को संस्थागत बनाया और समान आदर्शों वाला एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे नए शैक्षिक स्कूलों और संगठनों का विस्तार किया। इस संगठन ने रजा शाह की नीतियों को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिशें की। अपने शासनकाल के 20 वर्षों के दौरान रजा खान ने ईरानी समाज की धार्मिक और राष्ट्रीय संस्कृति के विनाश की स्थापना की।
रजा शाह ने पश्चिम से प्रभावित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार और प्रसार के लिए पहलवी काल के समय के अधिकांश इतिहासकारों और संरक्षकों को इसी काम पर लगा दिया। वह चाहता था कि इस तरह वह ईरान के दीर्घकालिक समाज और लोगों की प्रामाणिक और गहरी जड़ों वाली संस्कृति के स्थान पर वह सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों वाली एक नई सांस्कृतिक पहचान स्थापित करे। बेशक उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमताओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक मुद्दों के क्षेत्र में इस तरह का सोचा समझा कदम कभी भी उनकी समझ और ज्ञान का परिणाम नहीं हो सकता है। हालांकि कई यूरोपीय सलाहकारों की उपस्थिति और रजा खान के राजनीतिक और सांस्कृतिक तंत्र से जुड़े बुद्धिजीवियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विनाश के व्यापक कार्यक्रमों की तैयारी और कार्यान्वयन हुआ है।
रजा खान के शासनकाल के शुरुआत में ईरानी कला वास्तव में ईरान की पिछली परंपराओं की ही निरंतरता थी। साहित्य, रहस्यवाद, वास्तुकला, चित्रकला और उस समय की अन्य सामान्य कलाओं के पहलुओं में ईरानी कला और संस्कृति का इतिहास दिखाई देता था। ईरानी कलाकारों की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को दुनिया के सांस्कृतिक कार्यों में एक विशेषाधिकार और स्थान प्राप्त था। संवैधानिक काल तक ईरान की संस्कृति के विकास को एक विकासवादी आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक नया चक्र पूर्ववर्तियों का पूर्ण रूप और उपलब्धि है।
संवैधानिक आंदोलन की शुरुआत और विचारकों की नई श्रृंखला के उद्भव के साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यों ने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया।
संवैधानिक आंदोलन के बौद्धिक प्रभाव और शासक वर्ग के साथ पश्चिमी शिक्षित लोगों के नए वर्ग की उपस्थिति किसी भी अन्य कारक से अधिक देश में आधुनिकीकरण के लिए सबसे पहले पहलवी शासक के दृष्टिकोण का कारण बनी। यह सांस्कृतिक सुधार और आधुनिकीकरण पुरातन राष्ट्रवाद, आधुनिकतावाद और गैर धर्मवाद की तीन धुरियों के इर्द गिर्द घूमता है। पुरातन राष्ट्रवाद के संबंध में रजा शाह के कार्यों में नए संस्थाओं की स्थापना, आर्य जाति की विशिष्टता पर जोर देने के साथ पुरातनवाद को बढ़ावा देना, प्राचीन राजाओं के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ताकि ईरान की शाही सरकारों की महानता को दिखाया जा सके, फारसी भाषा अकादमी की स्थापना प्राचीन ईरान की गौरवशाली सभ्यता की उज्ज्वल छवि दिखाने के लिए प्राचीन स्मारकों की मरम्मत और उद्धार किया गया है।
इन सब उपायों के अलावा आधुनिकतावाद और धार्मिक मूल्यों के कमजोर होने को रजा शाह के सांस्कृतिक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का एक और हिस्सा माना जाता था, जिसके बाद धार्मिक मिशनरियों की उपस्थिति, नए स्कूलों की स्थापना, विदेशों से शिक्षित रईसों की वापसी, ये सब वे कार्य थे जिनको बौद्धिक संगठन एवं शैक्षणिक व्यवस्था परिवर्तन गंभीरता से ले रहे थे। वहीं इस बारे में सबसे ज्यादा चर्चा ये हुई कि आखिर रजा शाह संस्कृति को क्यों बदलना चाहते हैं। इस बारे में बहुत सारे दृष्टिकोण पेश किए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि उन्होंने अपनी तुर्की की यात्रा के बाद अचानक ईरानी समाज की संस्कृति पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया था और वे सभी चीजें ईरान में लागू करना चाहते थे जो उन्होंने तुर्की में देखी थी।
तुर्की से लौटने के बाद तुरंत बाद रजा खान ने जो सबसे पहले काम किया वह था सरकारी ढांचे में एक नया संगठन स्थापित करना। हुसैन मक्की अपनी किताब 20 साल का इतिहास में इस नए संगठन के बारे में लिखते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए रजा शाह द्वारा आधुनिक सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट उदाहरण था थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जिसे पहली प्रणाली की वैधता और स्वीकार्यता की नींव स्थापित करनी थी। इस संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रजा शाह ने अन्य मंत्रालयों के बजट से महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। वर्ष 1928 में डॉक्टर अहमद मतीन दफ्तरी की अध्यक्षता में थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई।
इस संगठन की स्थापना के लिए रजा खान के लक्ष्य भी दिलचस्प हैं। 20 साल का इतिहास नामक किताब के लेखक ने इस बारे में विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है। उनके अनुसार इस संगठन के ट्रस्टियों और अधिकारियों ने अपनी नीतियों के केंद्र में विश्लेषकों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया। इस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियां आधुनिकीकरण और आधुनिकता की शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, मित्रता और राजा के प्रति वफादारी की भावना को बढ़ावा देना है और देश की आर्थिक तथा सैन्य प्रगति को देश की जनता के मन में घर कर आना था। दूसरे शब्दों में रजा शाह की सरकार के सुधारों और सांस्कृतिक तथा सामाजिक नीतियों के संबंध में जनता की राय को उचित ठहराया जाना था और ये कार्य लोगों की नज़र में स्वीकार्य थे।
एक अन्य कार्य जो रजा खान ने थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा वह ये था कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को इस मुद्दे के हर पहलुओं से अवगत कराया जाए और गंभीरता से प्रशिक्षण दिया जाए। इस बारे में एंटी कल्चरलिज्म ड्यूरिंग रजा शाह पीरियड नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में आया था कि थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम तेहरान विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे संस्थाओं को सौंपा गया था। थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय परिषद में एक योजना तैयार की गई जिसके मुताबिक हर फैकल्टी को इस तरह तैयार किया जाए कि उसके प्रोफेसर छात्रों को रजा शाह के विचारों और उनके मुख्य एजेंडों के बारे में इस तरह जानकारी दें कि वे पहलवी शासन के प्रति पूरी तरह वफादार रहें। वास्तव में रजा शाह ने शैक्षिक प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह प्रणाली आधुनिकतावादी विचारों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने और युवा पीढ़ी के बीच राजशाही के हितों के आसपास राष्ट्रीय एकता बनाने का एक उपकरण बनी रहे।
रजा शाह के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यों में से एक ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला और उनके निर्माण के लिए अपनाए गए सिद्धांतों को सुरक्षित रखना है। रजा शाह के काल में वास्तुकला शैलियों की विविधता के बावजूद भ्रम से ग्रस्त थी। समय बीतने के साथ ईरानी विशेषताएं कम हो गईं और यूरोपीय पहलू अधिक से अधिक स्पष्ट हो गए। वास्तुकारों का इरादा पश्चिमी शैली को प्रतीकात्मक और प्राचीन आवरण से ढककर एक नई शैली स्थापित करने का था जिसमें एक दूसरे के साथ विषम संयोजन हो सके। इस भ्रम के अलावा प्रथम पहलवी के पश्चिमीकरण की ओर राजनीतिक झुकाव और एक देश से दूसरे देश में अपनी संबद्धता और लगाव को बदलने से समस्याएं दोगुनी हो गईं। उदाहरण के लिए जब उन्होंने हिटलर के जर्मनी के पक्ष में ब्रिटेन के पक्ष में नीति बदली तो वास्तुकला का जर्मन शैलियों की ओर झुकाव हुआ और अतीत के डिजाइन कम रंग होने लगे।
दूसरी ओर तेहरान के कई हिस्सों में बंजर भूमि की उपलब्धता के बावजूद नए और आधुनिक निर्माण के लिए पुराने और ऐतिहासिक निर्माणों का ध्वस्त किया जाना कार्यों को नष्ट करना इस बात का सबूत था कि रजा शाह प्राचीन ईरान की पहचान को नवीनीकरण के नाम पर समाप्त करना चाहते थे। विदेश में अध्ययन करने वाले ईरानी वास्तुकारों ने प्रमाणिक ईरानी वास्तुकला और पश्चिमी वास्तुकला के बीच अंतर को अच्छी तरह से बयान किया है। दूसरे शब्दों में ईरानी वास्तुकला को जो आंतरिक और बाहरी में रिक्त स्थान को अलग करने पर आधारित थी बाहरी वास्तुकला बन गई। इस कला में नई तकनीकों में न केवल लोहे के बीम और कंक्रीट जैसी नई निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया बल्कि ईरानी वास्तुकला की प्रामाणिक और व्यावहारिक विशेषताओं को हटा दिया गया और भूगोल और मौसम की स्थिति के अनुकूल व्यावहारिक सिद्धांतों को भुला दिया गया। दोस्तों इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
हूँ।